जो है उस बात को तो भूल जाना और आगे के लिए जो है हम बताते हैं। भरत जी ने कहा, महाराज ऐसा सुख तो हमको कहीं नहीं मिला, अयोध्या में भी सुख नहीं मिला, ऐसा सुख कहाँ मिल सकता है। ये इतना बड़ा सुख का प्रबंध आपने क्यों किया है हम जान गए, क्योंकि हम लोगों का अंतःकरण का भाव राम जी की तरफ चलने का है। आपने आज दुनिया को ये बताया है कि हे दुनिया वालों, आप लोग सोचते हो कि हम यदि भगवान का भजन करेंगे तो खाएंगे क्या। लोग देखते हैं कि हम यदि धन वगैरह नहीं कमाएंगे और केवल राम राम करने बैठ जाएंगे तो भोजन कैसे करेंगे। लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए आज आपने ये सारा प्रबंध करके सारे संसार को बताया है कि भगवान की तरफ चलने वाले के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। तुम कमा करके वो वस्तु इतनी नहीं पैदा कर सकते जो भगवान की कृपा से भगवान के साधना में चलने पर इतना सब कुछ मिल जाता है। ये बात हमने आपके इसके द्वारा पहचान ली। अपेत क्लम संताप, हमारे सारे संताप दूर हो गए। सच में पूछा जाए तो महाराज अयोध्या वासी सब बड़े खिन्न हो रहे थे। जब से ये वरदान बाजी चालू हुई, राम जी का वन गमन हुआ, उसके बाद से अयोध्या शोक में डूबी हुई थी और राम जी के प्रेम के अंदर, विरह के अंदर डूबी हुई थी। ऐसे विरही भक्तों का आज आपने सम्मान करके संसार में भगवान की भक्ति की दृढ़ता को, भक्ति की महिमा को स्थापित कर दिया। अब महाराज मुझे आगे का मार्ग बताइए, क्योंकि हम लोग इस विषय को पूरा जानते नहीं है, आप आदेश देवें। क्योंकि हमारे साथ वैसे निषाद राज है और भी वन के अंदर चलने वाले हैं, पर आप आदेश देंगे ना कि इस मार्ग से जाओ, तो उस समय हमारे मन में ये भावना रहेगी कि देखो भरद्वाज ऋषि ने ये कहा है, देखो भरद्वाज ऋषि ने ये कहा, आपकी स्मृति बनी रहेगी। अतएव आप हमको मार्ग बताइए। और महाराज देखो, जैसे भी हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पर कृपा रखिएगा। ये बात पूछने कहने पर भरद्वाज ऋषि ने कहा कि देखो भरत, यहाँ से 250 योजन के ऊपर चित्रकूट पर्वत है। देखो ये भरद्वाज ऋषि राम जी को भी मिले थे, राम जी को तो मिला तो वहां, राम जी को मिले तो यहाँ, उन्होंने कहा कि 10 कोस की दूरी पर है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये 250 योजन की दूरी पर है। तो 250 योजन और 10 कोस एक ही होता है, क्योंकि एक योजन 4 कोस का होता है, तो 4 ढाया 10 होता है, सीधी बात है। 1 ढाया 2 ढाया 5, 3 ढाया 7.5 और 4 ढाया 10। बस ये 10 का बता दिया कि 10 योजन है, वहां पर चित्रकूट पर्वत है। उस चित्रकूट पर्वत की तुम जाना और चित्रकूट पर्वत के तरफ जाओ तो वहां पर मंदाकिनी तुमको नदी मिलेगी। चित्रकूट पर्वत के ऊपर एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है, उस पर्णकुटी के अंदर तुम उनका दर्शन करोगे। और तुम यहाँ से जाओ ना, यहाँ से सीधे जा करके, और 2 मार्ग फटेंगे, एक तो जाएगा बाईं तरफ, एक जाएगा दाहिनी तरफ। तो तुम थोड़ा बाएं मार्ग को थोड़ा सा बाएं रखते हुए दाहिने तुम मुड़ जाना, और उसके बाद फिर तुम आगे सीधे चले जाना। आगे भाई तुमको मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा। भरद्वाज ऋषि ने जब ये बात कही, तब उसके बाद कौशल्या जी आई और सुमित्रा आई और केकई आई, एक एक ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भरद्वाज ने पूछा, भरत ये तीनों रानियां, इनका जरा परिचय कराओ, एक एक का परिचय कराओ। तो भरत ने कहा कि हे महाराज, जो बिचारी शोक में एकदम शोक के अंदर कर्षित हुई हुई है, एकदम शोक के अंदर जो मुरझा गई है, जो बात बात पर आंसू बहा करके अपने भाव प्रकट करती है, जिनके अंदर बड़ी दयालुता है, जो करुणा की साक्षात मूर्ति है, मेरे लिए परम देवी के समान है, वे दीन सारे जीवन में तपस्या करने वाली हमारी बड़ी माँ और श्री राम जी की माँ, इनका नाम कौशल्या जी है, इनके चरणों की मेरे पर बड़ी कृपा रही है। इनके बाई भुजा को अपने हाथ में लेकर चलने वाली और जो है हरदम इनकी सेवा में रहने वाली ये सुमित्रा जी हैं। इनके मन में बड़ा दुख है। कनेर के फूल की शाखा के समान जिसके पुष्प जो है गिर चुके हैं और वो टहनी जिस प्रकार से यूं कांपती रहती है, इस प्रकार से मेरी सुमित्रा माता कौशल्या की सेवा के अंदर तत्पर रहती है और कौशल्या के दुख से हरदम ये भी कांपती रहती है। ये वो सुमित्रा माता है जिन्होंने सुपुत्र लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को जन्म दिया है। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में है, शत्रुघ्न मेरे पास उपस्थित है। ये दोनों ही नरश्रेष्ठ अयोध्या के मूल प्राण कहे जाते हैं। और महाराज जिसने महाराज दशरथ को मृत्यु के कागार पर भेज दिया है और जिसके कारण से सारा अयोध्या कांड बिगड़ गया है और जिसने राम को वन में भेजा है, क्रोध की साक्षात मूर्ति, महान बुद्धिहीना और अयोध्या के ऐश्वर्य को चाहने वाली, राम को दुख देने वाली, सारी प्रजा को दुख देने वाली, क्रूर हृदय वाली, पाप निश्चय वाली ये केकई है जिन्होंने मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न किया है। ये सब सुनकर के भरद्वाज ने कहा, भरत बहुत हो गया, तुम अपनी मां के अंदर किसी प्रकार का दोष मत देखो। राम जी के वन गमन को तुम आज बुरा मानते हो लेकिन इतिहास कहेगा जब राम वन गमन की 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी तब इतिहास कहेगा, तुम कहोगे, सारी प्रजा कहेगी, सारा संसार कहेगा कि केके ने जो काम किया है वो काम साहसी काम, संसार में पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज तुमको ये बात बुरी लगती है पर देवताओं में, दानवों में, ऋषियों में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो सबके हित की बात सोचे। सबका हित सोच करके केके ने कार्य किया है। भरत भरत केके को दोष मत देना। इस प्रकार से आज पहली बार किसी ने केके की प्रशंसा की है सारे लोगों के बीच में। भरत जी महाराज के हृदय में एक ठंडी सांस आई। भरत जी महाराज ने भरद्वाज के चरणों में प्रणाम किया और फिर उसके बाद वहां से सेना सहित भरद्वाज ऋषि के आश्रम से भरत जी रवाना हुए। अब रवाना होकर के आगे बढ़े, खूब घाम तप रही है और फिर भी वे चले जा रहे हैं। उनके मन में राम दर्शन की आकांक्षा है इसलिए प्रकृति का प्रकोप उनके लिए कोई असह्य नहीं है। चलते चलते सेना बहुत दूर चली गई दक्षिण दिशा में जाकर। फिर वे कई पर्वतों को पार किए हैं, कई नदियों को पार किए हैं और नदियों को पार करते करते और आगे वे चित्रकूट पर्वत के पास में पहुंच रहे हैं। जब ये चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचे तो उस समय में वहां चित्रकूट पर्वत पर बड़ी हलचल होने लगी। सदाई जंगलों में निर्भय होकर विचरण करने वाले सिंह हैं, हाथी हैं, व्याघ्र हैं, वृक्ष हैं, पृषक हैं, सारे के सारे जानवर भरत जी की सेना को आते देखकर हाय हाय करते इधर ऐसे सू सू करके दौड़े चले जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं। सारी सेना पृथ्वी के ऊपर छा गई है। जिस प्रकार से बरसात आने पर पानी छाता है ऐसे वहां पर सेना छा गई है। वशिष्ठ जी महाराज को जो है भरत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, जैसा चित्रकूट हमने सुना था वो देश यहाँ आ गया है। भरद्वाज ऋषि ने बताया था कि चित्रकूट इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी बहने वाली, ये मंदाकिनी नदी बह रही है। चित्रकूट के शिखर भाग बड़े सुंदर मालूम देते हैं। ये देखो बड़े बड़े हाथी हमारे हाथियों को देख करके भगे चले जा रहे हैं। ये देखो यहाँ के वृक्ष थोड़ी सी वायु से खूब फूल है, उनके फूल लगे हुए फूल नीचे बरसते चले जा रहे हैं। और यहाँ तो बदल एकदम वृक्षों के ऊपर ऊपर ही चलते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा समय होता है कि तुरंत बरसने लग जाते हैं। यहाँ पर किन्नर लोग आते हैं, यहाँ पर देवता लोग भी आते हैं, यहाँ के घोड़ों को इधर उधर घूमते देखकर ऐसा मालूम देता है किसी सागर के अंदर कोई मगरमच्छ दौड़ते हो। ओहो, यहाँ पर मेघ जाल माने बदलों का समुदाय भी दिखाई देता है। मेघों के कारण से यहाँ थोड़ा अंधकार भी बना रहता है। यहाँ देखो खुरों से उड़ने वाली मिट्टी किस प्रकार से मेघों तक छाई भी रहती है और वर्षा करके वही मिट्टी वापस नीचे बरस जाती है। बड़ा सुंदर ये पर्वत है, हमको तो ये पर्वत बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखो हिरण है, हिरणियों के साथ घूमते हुए बड़े अच्छे मालूम देते हैं। ओ, ऐसे मालूम देते हैं जैसे इन हिरणों को और हिरणियों को किसी ने सजाया है, माने चित कमरे हिरण जगह जगह उनके छपके वगैरह लगे हुए, जैसे किसी ने फूल इनके ऊपर रख दिए हो। भरत के वचनों को सुनकर के सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इतने में ही उनको पर्वत के ऊपर धुआं दिखाई दिया। धुआं दिखते ही लोग कहने लगे, महाराज कुमार भरत जी, बिना मनुष्य के वो धुआं नहीं हो सकता। यदि वहाँ किसी प्रकार की अग्नि है तो प्रज्वलित की है, यहीं पर संभवतः नरव्याघ्र राजपुत्र श्री राम और लक्ष्मण सीता के साथ विराजमान हो सकते हैं। आइए, भरत जी ने कहा, ओहो बहुत अच्छा देखा, चलो जल्दी चलो। अब देखो हमारी सेना तो अब यहीं ठहर जाए, मैं शत्रुघ्न को साथ लेकर, सुमंत को साथ लेकर, धृति को साथ में लेकर और कतिपय मुख्य मुख्य सैनिकों को साथ में लेकर, निषाद राज को साथ में लेकर आगे चल रहा हूँ, ताकि राम जी के पास वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को भी बुला लिया जाए, क्योंकि पर्वत का मार्ग जो है वो दिखने में तो सुगम दिखता है लेकिन चलने में इतना सुगम नहीं होता, सब लोग आप एक जगह ही विराजमान न हो। इधर तो भरत जी महाराज की बात है और इधर महाराज चित्रकूट को बड़े प्रेम से भगवान अपने कुटिया के आगे बनी हुई चौकी पर बैठे हुए सीता को बोल रहे हैं, देखो सीते, जब से हम इस चित्रकूट में आकर बैठे हैं हमारे मन में राज्य के चले जाने का कोई दुख नहीं है, हमको कोई अयोध्या की याद नहीं आती है। मेरे मन में चित्रकूट का निवास बहुत सुखद मालूम देता है। देखो यहाँ के शिखर भाग, ऊंचे ऊंचे शिखर भाग मंदिरों के शिखर भाग के समान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। यहाँ के सफेद वृक्ष, सफेद फूल, लाल फूल, यहाँ मंजिष्ठ के फूल बड़े सुंदर मालूम देते हैं। हर वृक्ष से बड़ी सुंदर महक सुगंध आती है, सब वृक्षों के मिलकर के कितनी अच्छी सुवास यहाँ आ रही है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार से दुष्ट भाव वाला पुरुष तो आ ही नहीं सकता है। ये देखो इधर आम, ये जामुन, ये लोद्र, ये प्रियाल, ये पनस, ये धाव और ये देखो अंकोल, ये तरह तरह के वृक्ष हैं, कितने सुंदर और किस ढंग से इनका एक एक क्रम से उगना हुआ है। इधर देखो कश्मीर वृक्ष है, ये अरिष्ट वृक्ष है, वरुण वृक्ष है, ये मधुक है, ये तिलक है। इन वृक्षों के साथ में कई मनोरम वृक्ष और हैं और इन हर वृक्षों के पास में बैठने के लिए स्वाभाविक ही कैसे सुंदर चिकने चिकने पत्थर है, जिसको जहाँ रुचि हो वो वहाँ पर बैठ सकता है। तभी तो किन्नर यहाँ आते रहते हैं और तभी तो विद्याधर यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पर आकर के खेल करके, अब हंस करके, मनोविनोद करके अपने स्थान को चले जाते हैं। ओहो, तुम और लक्ष्मण मेरे साथ हो तो सीते यहाँ 14 वर्ष क्या पूरी आयु भी रहे तो कोई हमारे लिए कष्ट की बात नहीं है। हमने तो देखो वनवास का ये आज फल प्राप्त कर लिया, अरे कितना सुगम काम हो गया। पिताजी तो अपने वचनों से मुक्त हो गए और भरत का अपना काम प्रिय हो गया और तुम और हम चित्रकूट के इस दिव्य वातावरण में आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं, अपने को अमृतमय मीठे मीठे फल भी मिल रहे हैं। ऐसा सुंदर वनवास, अरे वनवास के कठिन है, वनवास में बड़ा दुख है, ये बात तो पहले सोचा करते थे, कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर कैसी सुंदर औषधियों की लताएं हैं, यदि औषधियों के सेवन से किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं हो और कैसे यहाँ पर कितना दूर दूर का वातावरण बिल्कुल शांत है। अरे यहाँ यदि कोई मनुष्य मिलते भी है तो ऋषि मुनि मिलते हैं और दूसरे कोई मिलते नहीं। राज्य के अंदर तो भाई राजा के यहाँ सब प्रकार के मनुष्य मिलते हैं, सुखी भी मिलते हैं, दुखी भी मिलते हैं, संत भी मिलते हैं, तो विषयी भी मिलते हैं, सब प्रकार के पुरुष मिलते हैं। पर यहाँ तो भाई बड़े शांत और दिव्य पुरुष मिलते हैं। बड़ा सुंदर ये चित्रकूट का जो है पर्वत है और यहाँ का निवास तो हमको बहुत अच्छा लगा है। देखो मैथिली, ये मंदाकिनी नदी कितनी विलक्षण है, कितनी सुंदर है, इसका पानी कितना मधुर है और इसका जल सेवन करने से मन में कितनी शांति मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी, ये न जाने कब से बह रही है और ऋषि मुनियों ने इसका सेवन किया है। ये नदी जटा धारण करने वाले ऋषि मुनियों का परम आश्रय बनी हुई है। अतएव जब सूर्य उदित होते हैं यहाँ ऋषि मुनियों की लाइन लग जाती है। सूर्य भगवान को जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर इस जल को छूते हैं तो जल में स्वाभाविक पवित्रता आएगी। देखो मणि के समान सुंदर जल है, सिद्ध जनों से परिपूर्ण है। वायु इसके यहाँ पर फूल लाला करके इसमें डाल देती है। वायु जब फूल डाल देता है तो इसमें जल में सुगंधी हो जाती है और चित्रकूट की और मंदाकिनी की शोभा हमारे हृदय में बस गई है। यहाँ का पवित्र जल का स्नान और इसका जल सेवन ये हमको बड़ा आनंद देता है। लक्ष्मण बेचारा हमारे लिए यहाँ का जल लेकर के आता है, तुम्हारी और हमारी सेवा करता है। न अयोध्या यही, न अयोध्या की कोई स्मृति है, न राज्य की कोई इच्छा है, यहाँ हमारी कोई इच्छा नहीं है। यदि इच्छा है तो यही है कि चित्रकूट में बैठे हैं, यहीं पर हम बैठे रहे और हमें कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता है। न सोचती यस्या नगत क्लमश सुखी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो चित्रकूट आए और सुखी ना हो, उसका दुख दूर ना हो, ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार से राम जी महाराज प्रिया सीता को तरह तरह से चित्रकूट की महिमा बता रहे थे और फिर अपने हाथ में एक फल लेकर उस फल का छिलका उतार करके और सुंदर फल लेकर के लो सीते, ये फल तो बड़ा सुंदर है, इस फल को तुम खाओ। तो राम जी के द्वारा दिया हुआ फल वो सीता जी खाती है। इतने में ही खूब मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी और वहाँ चित्रकूट के अंदर जो पशु हैं वो पशुओं के दौड़ने की आवाज आई, चिंगाड़ने की आवाज आई। एतस्मिन अंतरे त्रस्ता, और वहाँ बहुत आवाज आई। अर्दिता यूथपा मत्ता सयूथान ददृशु दिशा, राम जी ने देखा कि बहुत से यूथप के यूथप यूथपति हैं, ऐसे ऐसे हाथी अपने झुंडों के साथ चिंगाड़ चिंगाड़ करके और भागे चले जा रहे हैं और एक सेना का कलरव सुनाई दे रहा है। दौड़े दौड़े जो है ये सैनिक लोग, इन सैनिकों के घोड़े, इन सैनिकों के हाथी जंगल में स्वाभाविक रूप से रहने वाले पशुओं के पीछे पड़े हुए से मालूम देते हैं। वो पशु इधर उधर खूब दौड़ रहे हैं। ऐसे समय में राम जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण तुम सुमित्रा के बड़े श्रेष्ठ पुत्र हो भैया, ये देखो ये कैसी आवाज आ रही है और देखो ये हाथी क्यों चिंगाड़ते हुए दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े भैंसा है, ये भैंसा कैसे दौड़ रहे हैं, ये घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं जंगल के, क्या बात है, इनको किस बात का डर है। अच्छा अच्छा कोई राजा आया होगा शिकार खेलने के लिए, ये राजा लोग भी कैसे हैं, इनको शिकार यहाँ चित्रकूट में करने के लिए किसने छूट दी है, चित्रकूट तो शिकार करने की जगह नहीं है, चित्रकूट तो भाई यहाँ चित्रकूट तो शांति से भजन करने की जगह है, पर क्या करें आ गया कोई, पर ये चित्रकूट तो हर किसी के आने के लिए खुला भी तो नहीं है ना, ये हर किसी को पता भी नहीं है, पक्षी भी यहाँ हर कोई पक्षी नहीं आ सकता, सामान्य पक्षी चित्रकूट में आ नहीं सकता है। इतनी बड़ी सेना की ये बात कैसे समझ में आ रही है, कैसे आ गई, जरा तुम देखो ना। हाँ महाराज अभी देखता हूँ। इतना कहकर के एक बहुत ऊंचा साल वृक्ष था, साल वृक्ष के ऊपर लक्ष्मण जी चढ़ गए और उत्तर की ओर मुख करके देखा, बहुत बड़ी सेना है, सेना का कोई अंत नहीं है। अंत तो होगा ही, लेकिन अपनी दृष्टि से कोई अंत मालूम नहीं दे रहा है। हाथियों का, घोड़ों का और रथों का तो वहां पर पूरा का पूरा समुदाय इकट्ठा हुआ, पैदल की तो कोई गिनती नहीं है। उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, सेना देखिए, वृक्ष के ऊपर से बोलते हैं कि हे महाराज, अग्नि को बंद कर दो, सीता को आप कहीं छिपा दो और अपने हाथ में धनुष ले लो, बाण ले लो, कवच धारण कर लो, तैयार हो जाओ, इस सेना के साथ आपको युद्ध करना है और मुझे भी युद्ध करना है। राम जी ने कहा, अरे पेड़ के ऊपर मैं खड़ा है भाई, थोड़ा धीरे बोल, ज्यादा यदि कुछ करेगा तो नीचे पड़ जाएगा, तो धीरे धीरे बोल। क्या बात क्या है, किसकी सेना है मालूम तो करो, किसकी सेना हो सकती है। लक्ष्मण ने कहा, वहीं पर पेड़ पर ही वो खड़ा खड़ा चिल्ला चिल्ला कर, और किसकी सेना होगी, आप ही क्या छोटा भाई भरत उसकी सेना है, कैकेयी के बेटे भरत की सेना है, वो आप हम दो आपको और हमको अकेला समझकर मारने के लिए यहाँ सेना लेकर के आया है। मैंने वो रथ देखा है, उस रथ के ऊपर ध्वजा है और ध्वजा वो अयोध्या की ध्वजा है, उसका चिन्ह है, वो भरत ही है, दूसरा यहाँ कौन आ सकता है। देखते नहीं महाराज, हाथी के ऊपर बैठे हुए महावत, मूछों पर ताव दिए हुए, सिर ऊंचा किए हुए, हा हा ऐसे अट्टहास करते हुए जा रहे हैं। ये अट्टहास करने की जगह का अर्थ क्या है? और घोड़ों पर बैठे हुए लोग घोड़ों के ऊपर यूं अपनी एडी से उनके ठोकर लगा लगा करके उत्साहित करते हुए, घोड़ों को छलांग लगा लगा करके और ताकत दिखा दिखा करके हमारी तरफ ला रहे, इसका अर्थ क्या है? और बड़े बड़े धनुषधारी चारों तरफ से यूं धनुष ताने में चले आ रहे हैं, ये किस पर धनुष जो है किस पर बाण छोड़ेंगे, इसका अर्थ क्या है? और पदाति सैनिक बड़े सावधान हैं, वो रथ हमारा ही है, रथ के ऊपर ध्वजा है वो हमारी है। अच्छा महाराज, आपको अकेला समझ करके भरत ने आज सेना सहित यहाँ आप पर हम पर आक्रमण किया है। संभवतः उस दिन मैंने कहा था कि भरत आए तो भरत को सेना सहित में मार सकता हूँ, इसी बात भरत के पास पहुंची होगी, तो भरत ननिहाल से आकर वो सेना लेकर देखता होगा कि लक्ष्मण, उस दिन तुम बहुत चिल्लाए थे कि मैं भरत को देख लूंगा, वही आज मेरी बात को याद रखकर मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। रहने दीजिए, आप अपना कवच अपने पास रखो, अपना धनुष बाण अपने पास रखो, मैं अकेला जाता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अकेले ने वहाँ अयोध्या के अंदर प्रतिज्ञा की थी, आज भरत का वध मैं करूंगा। हे महाराज, आपको कोई दोष नहीं है, आप मुझे इस विषय में किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भरत ने पहले हमारे साथ अपकार किया है, उसके मारने में कोई दोष नहीं होता, पहले आक्रमण इसका है, वहां भी इसी ने सब हमारे पर राजनीति चलाई और यहाँ ये हमको मारने के लिए आया है। इस भरत को तो आज ये लक्ष्मण किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा, भरत को मारेगा, भरत के बाद वो सीधा अयोध्या जाएगा, अयोध्या जाकर के केकेयी को मारेगा, केकेयी से वदिष्यामि सानुबंधाम। खूब जो है लक्ष्मण जी बिगड़ गए, आज सारी पृथ्वी के ऊपर लहू और मांस का वहां पर प्रवाह बहेगा, आज मेरा क्रोध के फूटने का मौका मिल गया है, आज मैं इस चित्रकूट की शांति को भंग करके रहूंगा। ये आप इतने दिन तक चित्रकूट बड़ा अच्छा कहते रहे, चित्रकूट को रणभूमि बना दूंगा, और जितने ये हमारे ये बिचारे यहाँ रहने वाले पशु जो भाग रहे हैं, इन सबको सदा के लिए निर्भय कर दूंगा, मैं भरत को सेना सहित मारूंगा महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम जी महाराज ने कहा कि अरे लक्ष्मण, किमत्र धनुषा कार्यम, यहाँ चित्रकूट है, चित्रकूट ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ धनुष का स्मरण ही नहीं करना चाहिए, तलवार धनुष छत्र और ये जो है कवच और ढाल, इनका नाम ही अच्छा नहीं लगता। और भरत आ रहे, चित्रकूट आ रहे, चित्रकूट में सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता लक्ष्मण, चित्रकूट में तो वही आता है जिसके मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम होता है। हो अब समझ में आई तेरी बात। भरत को जब पता चला होगा कि हम लोग वनवास में आ गए हैं, तो भरत ने विचार किया कि मेरे कारण से राम को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण से सीता को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण से मेरा छोटा भाई वन में कष्ट पा रहा है और मेरे अंदर कोई राज्य की लिप्सा होगी। माने भरत ने सोचा कि मेरे अंदर कोई राज्य की लिप्सा होगी, ये सब लोग सोच रहे होंगे, इसलिए भरत यहाँ आ रहे हैं। ये भरत लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये भरत हमको मनाने के लिए आ रहे हैं। देखो लक्ष्मण, भरत मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। तुमने जो ही भरत का नाम लिया ना, तो मेरा मन का जो पहले भय था कि कौन आए हैं, सारा भय एकदम समाप्त हो गया, शांत हो गया, जहर उतरता है वैसे उतर गया। और तुम यदि यह कहते हो कि हम भरत को मार करके और आपको शासन दे देंगे, अच्छा सोचो, मैं शासन लेके करूंगा क्या जब भरत नहीं रहेगा और तुम नहीं रहोगे, शत्रुघ्न नहीं रहोगे, फिर बताओ मैं ये राज्य किसके लिए लूंगा? मैं आप लोग हैं इसलिए तो राज्य ले रहा हूं, आप लोग ही नहीं है तो मुझे राज्य लेकर के क्या करना है? ऐसे राज्य को मैं लेकर क्या करूंगा लक्ष्मण, ये राज्य मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, ये तो स्नेह के कारण से यहां आया है, मुझे मालूम तो इतना तो नहीं, मतलब अनुमान लगता है कि केकई के पास में जब भरत गया होगा और केकई को भरत ने खूब फटकारा होगा और पिताजी को भी न जाने क्या क्या वचन कहे होंगे भरत ने, उसके बाद भरत ने सोचा कि मैं मेरी माता के दिए हुए वचनों को बदलने के लिए स्वयं ही चला जाऊं और राम जी को मैं अपने द्वारा स्वयं ही लेकर के आ जाऊं, ऐसा विचार करके सबको साथ में लेकर आया है। लक्ष्मण क्या बताऊं, तुमने जो भरत के लिए शब्द कहे उन शब्दों से मेरे मन में पीड़ा हो रही है, भरत के लिए मैं शब्द सुन नहीं सकता हूं। एक पुत्र है वो पिता को कैसे मार सकता है, ऐसे छोटा भाई बड़े भाई को कैसे मार सकता है? वक्ष्यामि, अरे एक बात लगी लक्ष्मण, ये तू वहां भी राज्य के लिए नाराज हुआ, यहां भी तू राज्य के ऊपर तेरी दृष्टि गई, सच बता लक्ष्मण, तेरे मन में कोई राज्य की इच्छा है क्या? तू यदि राज्य चाहता हो तो भरत तो आ ही रहा है, भरत को कहूंगा कि भरत छोड़ो, तुम और हम तो चले वन में और ये राज्य तुम लक्ष्मण को दे दो, तुमको हम राजगद्दी पर बैठा दे बाबा, अयोध्या जाने तुम जानो, तुमको हम राज्य दे, राजा दे, राज्य पद दे देवे। तो मेरा ऐसा कहने पर भरत तत्काल हां भरेगा और वो बड़े प्रेम से तुमको राज्य दे देगा। लक्ष्मण जी का चेहरा एकदम फीका हो गया, लक्ष्मण जी बड़े लज्जित हुए और फिर लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ऐसा भी हो सकता है महाराज दशरथ का मन नहीं लगा हो और वो आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हो। लक्ष्मण जी का सारा जोश खत्म हो गया हो। राम जी ने कहा, हाँ हो भी सकता है, हमारे पिता के मन में ये भावना आ सकती है कि राम और लक्ष्मण सीता तीनों के तीनों सुखोचित है, माने सुख के लिए योग्य है, दुखोचित नहीं है, इनको वनवास से लौटा लिया जाए, तो वो वनवास से लौटाने के लिए आए होंगे। देखो लक्ष्मण, ऐसे समय में बड़ी मुश्किल होती है, पिताजी के वचनों की रक्षा कैसे होगी? नहीं नहीं वो मेरा स्वभाव तो जानते हैं, लेकिन वो सीता का दुख देख नहीं सकते होंगे, इसलिए सीता को लौटाने के लिए आएंगे। और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न इन दोनों को तो भाई मेरे मन में उनके मन में मेरे प्रति बहुत प्रेम है। ये शत्रुंजय नाम का अपना हाथी है, बूढ़ा हाथी, ये तो हमारे पिताजी को बहुत पसंद था, उसी पर बैठते थे, परंतु यहां ध्वजा तो रथों पर लगाई गई है, कोई सिंहासन हाथी पर नहीं दिख रहा है, छत्र नहीं दिख रहा है, कोई जो है चंवर दिखाई नहीं दे रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कुछ पता नहीं चला। लक्ष्मण तुम थोड़ा वृक्ष से नीचे उतरो और नीचे उतर करके और थोड़ा आगे जाकर के ठीक ढंग से तुम शत्रुंजय नाम का जो अपना हाथी जो सेना के आगे आगे चला करता है उसको गौर से देख करके आओ। लक्ष्मण ने कहा महाराज अभी आता हूं। थोड़ा दूर आगे गया, आगे जाकर वो लौट करके कहता है कि महाराज सिंहासन नहीं है, छत्र नहीं है, किसी प्रकार से ऊपर ध्वजा भी ध्वजा है लेकिन वो हाथी पर नहीं है और वो चंवर नहीं है। राम जी महाराज ये बात कर रहे हैं, इधर भरत जी महाराज अपने साथ के लोगों के साथ आगे आ रहे हैं, इधर सेना भी थोड़ी 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 पैदल पैदल आगे बढ़ रही है। भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा शत्रुघ्न देखो क्षिप्रम वनम इदम सौम्य, इस वन के अंदर अपन प्रवेश करते हैं, निषाद राज जी के साथ में प्रवेश करते हैं। निषाद राज जी आप भी इस वन को तो खूब अच्छी तरह से जानते होंगे ना, आप भी बड़े अपने साथ के निषादों के जिनके धनुष के ऊपर बाण है बड़ी सुरक्षा के साथ चलिएगा और हमारे साथ में अमात्य है गुरुजन है इनके साथ मैं भी चल रहा हूँ। जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे, लक्ष्मण के दर्शन नहीं होंगे, सीता के दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। चंद्रमा के समान मुख वाले राम जी के दर्शन से ही मुझे शांति मिलने वाली है। ओह जब तक उनके चरणों